ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अब तक 1126 मामले दर्ज किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कमी की। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी के साथ इसे 6.25% किया गया। राजधानी के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला जारी। बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंच रहे हैं और 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज ने बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटों की मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुश्री वाज ने कहा कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनाव दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की सतत निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयोग के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें ईवीएम और वीवीपैट की 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा की तैनाती, स्ट्रांग रूम में आने जाने के लिए एक ही द्वार, डबल लॉक सिस्टम, स्ट्रांग रूम के खुलने और बंद होने के दौरान वीडियोग्राफी, वीआईपी और अधिकारियों सहित किसी भी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। मतगणना पर्यवेक्षकों, सहायकों, माइक्रो पर्यवेक्षकों, सांख्यिकीय कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मियों सहित लगभग 5,000 स्टाफ सदस्यों को मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स की मतदाता पर्चियों की मतगणना रैंडमली चुनी जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ समन्वय में काम कर रही है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 38 कंपनियों को तैनात किया गया है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की।
व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सारी यूनिट्स, चाहे वो लोकल पुलिस हो, पीसीआर हो, ट्रैफिक पुलिस है, सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और 38 कंपनियां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की, 2 कंपनियां प्रति मतगणना केंद्र, 19 मतगणना केंद्र के लिए ये 38 कंपनियां दी गई हैं। मेरा लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि शांति बनाए रखें।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह मतदाताओं को मुख्य हितधारक और राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिकता वाला हितधारक मानता है। आयोग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूर्ण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप में जवाब देगा। चुनाव निकाय की टिप्पणी। महाराष्ट्र में चुनाव आंकड़ों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के परिदृश्य में आई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस आरोप की जांच के लिए उनके निवास पर पहुंची, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। हालांकि जांच दल को निवास स्थान में जाने नहीं दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मामले में ACB में शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ACB को सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों को प्रलोभित कर रही थी।
यहाँ शिकायत देने आए हैं, हमारे वकील साहब हमारे साथ हैं, और जिस तरह खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है, 15-15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसकी शिकायत मैं ACB भवन में ACB के दफ्तर में करने के लिए आया हूँ।
दूसरी ओर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को आधारहीन बताया। श्री सचदेवा ने मीडिया को बताया कि इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को साक्ष्य उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इस संबंध में शिकायत करेगी। श्री सचदेवा ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी ने सबूत पेश नहीं किए तो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम।
राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अब तक 1126 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 477 गैर लाइसेंसी हथियार और 538 अवैध कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार लगभग 1,00,000 लीटर से अधिक शराब, करीब 78 करोड़ रुपए मूल्य के 206 किलोग्राम मादक पदार्थ और 11 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई है। अब तक 33,000 से अधिक लोगों को आबकारी कानून और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय,
दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम
8 फरवरी सुबह 9 बजे से,
मतगणना की पल पल की खबर,
हर सीट की सटीक जानकारी,
संवाददाताओं से ताजा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
लोक निर्णय।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में यह घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर 6% और मार्जिनल स्थायी सुविधा एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी।
The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate shall be at 6.0% and the marginal standing facility rate and the bank rate shall be 6.5%.
Lok Sabha mein aaj aam budget 2025-26 par charcha hui. Charcha ki shuruaat karte hue Congress ke Dharmveer Gandhi ne aarop lagaya कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूद कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और यह देश के गरीबों और वंचितों के लिए बड़ी समस्या है।
It did not offer any relief to the farmers as regard to the legal guarantee on MSP, waiving of loans of farmers, farming labourers, and not lifting or withdrawing GST on the farming equipments and machinery, and not giving a robust farm insurance or crop insurance scheme in the budget, sir. So it has totally failed to address to the grievances of our farming community.
समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह ने भी बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। चर्चा में भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट की सराहना की। श्री सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
इस पूरे के पूरे बजट दस्तावेज को हमने 4 भागों में मांगा, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी। लेकिन किसानों की बात होती है, गरीब की बात होती है, युवाओं की बात होती है, चर्चा तक हो जाती है। ऐसी सरकार नहीं आई थी जिसने बात को यथार्थ में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है।
सरकार ने आज कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर में भी 69% की गिरावट आई है। श्री नड्डा ने इसका श्रेय देशभर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और उपायों को दिया। सरकार ने आज कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 10 साल से अधिक समय से लंबित इन मामलों में से लगभग 6,000 सिविल मामले हैं। एक अन्य लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि पिछले साल के अंत तक देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3,00,000 मामलों का निपटारा किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हो गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा तथा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि आज दो बड़े ऐतिहासिक आयोजनों के माध्यम से भारत विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एक ओर जहां भारत की सामाजिक समरसता और एकता के सूत्र में बांधने वाले महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की सांझी कलात्मक विरासत का प्रदर्शन करने वाले सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज शुभारंभ हुआ है।
मेले का आयोजन निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक और कलात्मक महाकुंभ के रूप में जिसने पूरे विश्व भर में पहचान बनाई है, यह हरियाणा और देश भर के दस्तकारों को, हुनरमंदों को, कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को एक नए बाजार और एक नई पहचान देने का काम करेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले 37 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के लिए अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। ये मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी है जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहचान बन चुका है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है।
हरियाणा के विरासत और पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राष्ट्रीय एकता और कला संस्कृति को समृद्ध बनाने पर जोर देते हैं और सूरजकुंड का ये मेला भारत की विविधता में एकता को दर्शाने और प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने की दिशा में शानदार उदाहरण है। राजधानी के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला जारी है। बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग हैं, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव को प्रदर्शित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुस्तक मेले में आगंतुक अलग अलग विषयों और भाषाओं के साहित्य में रुचि दिखा रहे हैं।
विश्व पुस्तक मेले में शैक्षणिक पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, उपन्यास और प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तकों के स्टॉल पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महाराष्ट्र के प्रज्ञादीप ने बताया कि मेले में सभी विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं।
काफी सारी पुस्तकें हैं, मैंने उससे कुछ खरीदी भी है, बहुत सारी किताबें, अच्छी किताबें हैं और कुल मिला के सही लगा।
नोएडा से आए हर्ष ने बताया कि मेले में पुस्तकों का अच्छा संग्रह उपलब्ध है।
इस साल में स्पेशली गीता प्रेस के लिए आया था, काफी सारी किताबें थी जो मुझे चाहिए थी और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सारा कलेक्शन मिल जाता है यहाँ पर।
9 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन भारत मंडपम के हॉल 2 से लेकर 6 में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। मेले की टिकटों की बिक्री भारत व्यापार संवर्धन संगठन ऑनलाइन कर रहा है। टिकट NBT इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
राजधानी के कई क्षेत्रों में भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार कल GG3 विकासपुरी, A2 ब्लॉक जनकपुरी और C6A ब्लॉक जनकपुरी समेत कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा और दिन भर तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अब तक 1126 मामले दर्ज किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कमी की। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी के साथ इसे 6.25% किया गया। राजधानी के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला जारी। बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंच रहे हैं और 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।